21। हम लोग केवल मृगया के लिए ही बाहर नहीं निकले थे। मैं दुर्योधन से पूर्ण एकांत में बातें करना चाहता था। हमने अपने साथ केवल 50 से के लगभग निष्णात अश्वसाध लिए थे बस। इस मृगया के लिए मैंने शोण को भी टाल दिया था। ठीक दोपहर को चिलचिलाती धूप में हमारी हस्तिदंत वर्ण की श्वेत घोड़ी अपनी ग्रीवा त्रिशिखर नगर के मार्ग पर दौड़ने लगे। वैशाख की गर्मी से व्याकुल नगरजन द्वार की किवाड़े आदि बंद कर अपने अपने घरों में विश्राम कर रहे थे। इसीलिए इतने प्रशस्त मार्ग पर एक भी नगरजन कहीं घूमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। हम कहाँ जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं, यह बात अकेले सेनापति को छोड़कर और किसी को भी ज्ञात नहीं थी। हमारे साथ जो अश्वसाध थे वे भी यह अच्छी तरह नहीं जानते थे। एक मार्गदर्शक अश्वसाध हमारे आगे दौड़ रहा था। शेष सब बलगाएं थामे हुए हमारे पीछे पीछे थोड़ा अंतर रखकर दौड़ रहे थे। वर्षा से लबालब भरा रहने वाला गंगा का विशाल पात्र ग्रीष्म की मार से कृष होकर स्थान स्थान पर कलकल कर रहा था। हमने वह पार किया। उसके छिड़काए प्रवाह में अपने श्वेत शुभ्र शरीरों के प्रतिबिंबों की एक लहराती रेखा खींचती हुई पानी उछालती हुई हमारी घोड़ियों ने उसको लांघा। आगे जो इच्छुमती थी वह भी पीछे रह गई। इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर की सीमाएं जहां मिलती थी वह वर्णावत का घनघोर अरण्य अब प्रारंभ हो गया था। वर्णावत की सीमा में घुसते ही पूर्व निश्चयानुसार अश्वसाध चारों दिशाओं में बिखर गए। हाथों में तेजी से भाले चलाते हुए वे सब जोर जोर से चिल्लाएंगे तथा सारे अरण्य को घेर कर कोलाहल से कपा देंगे। उनके कोलाहल से भड़के हुए हरिण आवाज की प्रतिकूल दिशा में ऊंची ऊंची छलांगें मारते हुए दौड़ेंगे। हम लोग एक टीवले पर बैठकर सामने के पठार पर दौड़ते हुए उन भयभीत हरिणों को बाण से अचूक भेदेंगे। यह निश्चिंत हुआ कि जैसे ही हम टीले पर निशाना लगाने के लिए स्थान ग्रहण करें चारों ओर से कोलाहल करने वाले अश्वसाधकों को संकेत के लिए उनकी पूंछ में बजने वाले घुंघरू बधे हैं ऐसा चार बाण मैं चारों दिशाओं में छोड़ूंगा और तब कोलाहल करने वाले एक साथ कोलाहल प्रारंभ कर देंगे। निशाना लगाने के लिए हमने एक कछार में एक टीले पर स्थान चुना। सामने हरी घास पर का विस्तृत पठार था। सब ठीक ठाक होते ही एक बाण धनुष पर चढ़ाकर वीर आशा लगाकर मैंने चारों बाण चारों दिशाओं फेंके। सू कल सू आवाज करते हुए वे अरण्य में चारों दिशाओं में लहराते हुए दौड़े। बिखरे हुए अश्वसाधों को संकेत मिल गया। हल्ला गुल्ला करते हुए ढिंढोरा पीटते हुए वे अरण्य के सभी प्राणियों को अपना शांत शीतल निवास स्थान छोड़ने को विवश करने लगे। संपूर्ण अरण्य रुग्ण व्यक्ति की तरह कराह उठा। चित्र विचित्र ध्वनियां आपस में मिल गई। सारंग चित्ररथ क्रौंच कपोज शेन कोकिल पत्ररथ आदि विविध पंक्षियों के झुंड अरण्य से बाहर जाने के लिए चित्कार कर टपटते हुए हमें टीले पर सही दिखाई देने लगे। थोड़ी ही देर में चीं चीं करते हुए अपने भारी भरकम शरीरों को संभालते हुए हाथियों का एक विशाल झुंड अकस्मात पठार पर कछार में आ गया। हम दोनों टीले पर घास में विरासन लगाए धनुष के प्रत्यंचा तान कर तैयार थे। झुंड के एक विशालकाय हाथी पर निशाना लगाने के लिए दुर्योधन अपने हाथ के धनुष को हाथी की गतिविधि के साथ घुमाने लगा, परंतु मैंने संकेत से उसे रोका। हाथी मार कर कोई लाभ नहीं था। उसको उठाकर ले चलने के लिए हम अपने साथ पर्याप्त सेवक भी नहीं लाए थे। पर्वतीय प्रदेश में जैसे नदी का पात्र मोड़ लेता हुआ चलता है वैसे ही एक झुंड चित्कार करता हुआ सूणों को इधर उधर फटकारता हुआ पठार पार कर चलता बना। थोड़ी ही देर में अरण्य की घनी झाड़ियों की ओर से 40-50 हिरणों का एक झुंड ऊंचाई से गिरने वाले झरने के पानी के तुषार की भांति लयबद्ध छलांगे लगाता हुआ पठार पर दौड़ने लगा। धनुष संभाले हुए हमारे हाथ उनके मर्म स्थानों पर निशाना साधते हुए उनकी दौड़ के साथ हिलने ढूंढने लगे। हमारा आसन और झुंड इनके बीच की दूरी का विचार कर लक्ष्यभूत हरिण की गति को अचूक पकड़ने वाले गति से बाण को हरिण के मुख के कुछ आगे ही छोड़ना चाहिए था। सू सू हम दोनों के ही धनुषों से निरंतर बाण छूटने लगे। औदम्बर के वृक्ष से पके फल हवा के झोंकों से जैसे टपटप नीचे गिरते हैं वैसे ही अनेक हरिण ऊर में बाण लिए कछार में गिरने लगे। शेष हरणों का झुंड अपने साथियों की ओर मुड़कर भी न देखता हुआ छलांगे लगाता कछार से बाहर हो गया। मृग्या हो चुकी थी। हमने संतोष की सांस ली। तुमने कितने बाण छोड़े हैं, दुर्योधन ने मेरी ओर देखते हुए पूछा। छह, तुमने, पठार की ओर देखते हुए मैंने पूछा। पांच, उसने विचारागा की ओर देखते हुए उत्तर दिया। तो फिर कछार में 11 हिरण मिलने चाहिए या फिर 5 हरिणों के देह में और 2-2 और 1 हरिण के देह में एक बाण होना ही चाहिए, मैं विरासन छोड़कर ऊपर उठता हुआ बोला। हाँ चलो देखें। वह भी अपना विरासन छोड़कर ऊपर उठने लगा, परंतु वह पूरा उठ ही नहीं सका। अचानक ही कांड, यह हृदय विदारक चीख उसके मुख से निकली और वह पैरों के नीचे घास में एकदम ऐसे गिर पड़ा जैसे पर्वत की चोटी फिसल पड़ती। क्षण भर में पहले रस ले लेकर मृग्या की चर्चा करने वाला गदावीर को क्षण भर में क्या हो गया जो ऐसे चीख रहा है ये समझ में न आ सकने के कारण घबरा कर नीचे झुककर उसको ऊपर उठाने के लिए मैंने उसकी कांख में हाथ डाला, परंतु सामने का दृश्य देखते ही मेरा हृदय भी धक्क से रह गया। मृगया के पीछे स्वयं को भूले हुए दुर्योधन का विरासन में घुटने पर टेके हुए बाएं पैर का पिछला भाग घास में छिपे हुए एक लंबे विशाल अजगर ने घुटने तक निगल लिया था। पैरों में चमड़े के जूते होने के कारण दुर्योधन को उसके जबड़ों के स्पर्श का भी पता नहीं चला था। भक्ष कहीं हाथ से निकल न जाए इस विचार से उस लंबे अजगर ने अपना चुभाग भी क्षण भर में ही ऊपर उठाकर दुर्योधन के समस्त शरीर को लपेट लिया था। हस्तिनापुर के भावी सम्राट को एक अजगर ने खरगोश के बच्चे की तरह अपने अंक में दबोच रखा था। मस्तक का मुकुट चारागाह की धूल में पड़ा था। पानी के बाहर स्थित मछली की तरह उछलता हुआ दुर्योधन छुटकारे के लिए छटपटा रहा था, परंतु प्रत्येक प्रत्येक प्रयत्न के साथ ही वह प्राण विशुद्ध होकर उसको और अधिक जकड़ता जा रहा था। वे दोनों घास पर गड्ढमड्ढ लुढ़क रहे थे। घृणित मृत्यु की भयंकर प्रतीति से दुर्योधन कर्ण कर्ण कहकर चीखता हुआ अपने हाथ में लगे बाण का फल व सपासप उस प्राणी की कुंडली में होठ चबाता हुआ घोंपने लगा। भूल से अपने पैर में भी वह लग सकता है, उसकी चिंता भी उसे न थी। क्षण में दुर्योधन क्षण में अजगर दिखाई देते। विचित्र रोमांचक पैर पटकता हुआ उस मृत्यु पाश को छुड़ाने के लिए दुर्योधन पूरा बल लगा रहा था। नीचे की घास उध्वस्त हो गई और इतने बड़े सामर्थ्यशाली गदावीर को मेरे देखते ही देखते उस प्राणी ने लकड़ी के गट्ठर की तरह अपने पाश में जकड़ डाला। कर्ण प्राणों की आशा छोड़कर दुर्योधन चीख पड़ा। उसकी यह अंतिम चीख इतनी हृदय विदारक थी कि गगन को भी भेज जाए, और चीख अपनी संपूर्ण शक्ति से अपने देह झटका कर वह मूर्छित हो गया। अब मेरा रुका रहना असंभव था, परंतु क्या कर सकता था मैं? कोई झटपट उपाय सोच ले, इतना सरल अवसर वह नहीं था। किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर मैंने उस विशाल अजगर की ओर देखा। केवल चुलबुलाहट थी भक्ष के लिए तड़पने वाली। मेरे हाथ में बचे हुए बाणों को अतिरिक्त कोई शस्त्र भी नहीं था, और यदि होता भी तो उसका क्या उपयोग हो सकता था? अजगर की कुंडली में छटपटाते हुए दुर्योधन को सुरक्षित रखकर कोई कैसे शस्त्र चला सकता था? चीवड़ चर्म वाले उस भयानक सर्प पर बाण नहीं चल सकता था। मुझको कुछ भी नहीं सूझ रहा था। मैं एक पाषाण पर बैठ गया और क्या करना चाहिए विचार करने लगा। संध्या घिरती जा रही थी, इसीलिए एक एक क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण था। जिसने सदैव मुझको वैभव के शिखर पर पहुंचाया था, मेरे उस प्राणप्रिय मित्र के जीवन मरण का प्रश्न था। संध्या काल होने से मैं कितनी देर रहा जानने के लिए मैंने पश्चिम क्षितिज पर दृष्टि डाली। जो पर्वत शिखरों के मध्य सूर्य नारायण अपनी अक्षय अखंड किरणों को पृथ्वी के मस्तक पर उलटते हुए खड़े थे। मेरे सारे शरीर में एक विचित्र सी सिहरन दौड़ गई, अनुभूत अवर्णनीय अकंपनीय। अधिक सो विचार न कर मैं तुरंत उठा, आगे बढ़कर हाथ से धनुष दूर फेंक दिया और दुर्योधन सहित उस अजगर को उठाकर एकदम कंधे पर रख लिया। उस आर्द्र से प्राणी का स्पर्श साक्षात मृत्यु ही थी। हाँ, मृत्यु कितने विभिन्न रूप धारण कर जीवन के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती है। मृत्यु जन्म के उस द्वंद को कंधे पर रखकर अस्त होते हुई किरणों में उस ऊंचे टीले से मैं स्वयं को संतुलित करता हुआ उतरने लगा। मन में विचारों का वात्या चक्र चल रहा था। इस विकट स्थिति से यदि दुर्योधन बच नहीं सका तो मेरे और हस्तिनापुर के भविष्य में क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं सूझ रहा था। फिर भी दृढ़ता से मैं पठार पर चलता जा रहा था। पठार पर कछार में पड़े हुए मृगया के हरिणों को एकत्र करते हुए अश्वसाद मुझको दूर से दिखाई दे रहे थे। जैसे भी हो उन तक तो पहुंचना ही पड़ेगा, यह सोचकर दो प्रचंड शिलाओं के समान भारी और विचित्र दिखाई देने वाले उस अजगर को कंधे पर रखे हुए मैं तेजी से पैर रख रहा था। मेरा सारा जीवन ही ऐसी कठोर परीक्षाएं लेने वाली विकट घटनाओं में से होकर चलता आया था। उन सब घटनाओं में आज की घटना को मुझको विशेष रूप से रोमांचित कर देने वाली लगी। मैं कंधे पर कुछ लेकर आ रहा हूँ और कोई बड़ी मृगया ही होगी, यह सोचकर कछार के सभी अश्वसाद एकत्रित होकर हाथ उठाकर आनंद से संकेत करते हुए चिल्लाने लगे। परंतु जैसे जैसे मैं उनके समीप पहुंचने लगा, वैसे ही वैसे आंखें फाड़ फाड़ कर वे पाषाण की मूर्ति की तरह निश्चल मेरी ओर देखने लगे। उनमें से आधे से अधिक जनों ने तो मुझको निश्चय मूर्ख समझा होगा। मेरे मस्तिष्क में विचारों का तूफान चल रहा था। दुर्योधन को कैसे बचाया जाए? मैं सबके पास पहुंचते ही घुटने टेक कर मैंने वह अजगर नीचे घास में डाल दिया। आदरीय के छोर से मस्तक पर श्वेत पहुंचते हुए मैंने उसकी ओर देखा। मरण प्राय यातनाओं से मूर्छित हुए दुर्योधन का केवल सिर ही अजगर की कुंडली से बाहर था। लकड़ी के कुंडे की तरह वह निश्चेष्ट पड़ा हुआ था। कुंडली चुलबुला रही थी, क्षण प्रति क्षण वह अधिक कसती जा रही थी। आंखें निकालकर मैं सभी अश्वसादों पर जोर से चिल्लाया, कायरों की तरह देख क्या रहे हो? हस्तिनापुर के राजा को अजगर निकल गया है। जब सुनते ही राजभवन के सभी लोग तुम्हारे मुंह पर थूकेंगे और तुम्हारे केश मुड़ाकर गधे पर बैठाकर तुम्हें नगर में घुमाएंगे। पकड़ो उस क्रूर प्राणी को और राजा के चारों ओर की उसकी लपेट को खोलो। वे 40-50 अश्वसाद उस शब्दाघात से सावधान हुए। आगे बढ़कर 10-10 जनों ने बड़े प्रयत्न से उस विशाल काय प्राणी की कुंडली का एक एक घेरा खोला, परंतु उसके जबड़े में एक बार पकड़े हुए दुर्योधन के पैर को वह बड़े बड़े विरोध के बावजूद छोड़ने को तैयार नहीं था। निरंतर ऐंठता हुआ वह शक्तिशाली सर्प अपने एक एक प्रहार से 10-10 जनों को दूर फेंकने का प्रयत्न कर रहा था, परंतु प्रत्येक ने उसको जहां मिला वहीं रस्सी की तरह कसकर पकड़ रखा था। अदरी का फेंटा बांध कर मैं आगे बढ़ा। वह प्राणी आंखें मीच कर पहले कभी अनुभव न किए हुए तीव्र विरोध का सामना करने के लिए उतनी ही तीव्रता से तैयारी करने लगा। उसके मुख के पास जाकर मैंने अपनी उंगलियां उसके जबड़े की दृढ़ पकड़ में घुसेड़ दी। थोड़ा सा आधार मिलते ही पूरी शक्ति लगाकर एक ही झटके में दोनों जबड़े ऊपर और नीचे की ओर कर दिए। मेरी भुजाओं के सभी स्नायु तन कर फूल उठे थे। होठ दांतों के नीचे दबे हुए थे, उनसे टपकता हुआ रक्त अधरी पर फैल रहा था। अरिष्ट सेन, पैर बाहर निकाल, मैंने चिल्लाकर एक अश्वसात को आदेश दिया। फुर्ती से आगे बढ़कर उसने दुर्योधन का आधी घड़ी तक जबड़े में अटका हुआ पैर बाहर निकाला और राजा को मूर्छित देहदा साथ दूर ले जाकर रख दी। उन हरिणों में से एक हरिण लेकर उसका पैर उसके जबड़े में दे दो। मेरी भुजाओं पर जो तनाव था वह अब असह्य होता जा रहा था। हरिणों की ओर भौंहों से संकेत करते हुए मैंने उससे कहा। अरिष्ट सेन झपट कर एक हिरण को घसीटता हुआ लाया और एक के बजाय उसके दोनों पैर उसके मेरे द्वारा चौड़े किए गए उस जबड़े में ठूंस दिए। मैंने तनाव कम किया, अजगर ने हरिण को पकड़ लिया। मेरा मस्तक श्वेत से भीग गया था, नसें थरथरा रही थी। हाथ से उस जबड़े को छोड़कर ऊपर उठते हुए मैंने मस्तक से श्वेत पूछा। एक क्षण को ही रुका। अछार में मूर्छित पड़े हुए दुर्योधन को देखकर मन विषण हो गया। कौन राजा, कैसा राजा, सब मन की भ्रामक कल्पनाएं हैं, सब विचारों के असत्य कूल है। हस्तिनापुर का वह भावी सम्राट एक अछार में लकड़ी के कुंडे की तरह अचेत पड़ा हुआ है। असहाय, एकाकी एक साधारण अजगर आज उस सम्राट के प्राणों का ग्राहक बन गया। मैं दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। जबड़े में आधी घड़ी तक रहते हुए उसके पैर पर ममता से हाथ फेरते हुए पैर में टूटे हुए अजगर के दो दांत मेरे हाथ में आए। उस मंद बुद्धि घृणित प्राणी ने अपने दांत टूट जाने दिए थे, परंतु एक बार गड़ाए हुए दांत उसने किसी भी भय से भक्ष से बाहर नहीं निकाले थे। मैंने उन दांतों को निकाल दिया। सभी अश्वसाद इस घटना से क्रुद्ध होकर इधर उधर से पत्थर लाकर उस जर्जर सर्प को मारने लगे। उनको रोकने के लिए मैंने हाथ उठाकर चिल्लाया, रुको। मेरी ओर आश्चर्य से देखते हुए उन्होंने हाथों में पत्थर नीचे डाल दिए। उनको अपने राजा का ध्यान आया। उस सर्प को वहीं छोड़कर दुर्योधन के मूर्छित शरीर की ओर दौड़ते हुए मेरे पास आए। मैंने एक बार उस चेतनाहीन सर्प पर दृष्टि डाली। मुझको उसने वहां एक मौलिक विचार दिया था। दांत जहां जहां नहीं गाड़े जाते हैं और एक बार गड़ाने के बाद बाहर नहीं निकाले जाते हैं, भले ही टूट जाए। राजा को घोड़े पर रख लो, मैंने सबको लक्ष्य कर आज्ञा दी। सबने दुर्योधन को धीरे से उठाकर एक विशाल घोड़े पर औंधा लिटा दिया। मैंने मुक्ति की सांस ली। मृग्या में कितने हरण मारे गए अरिष्ट सेन, एक अश्वसात से पूछा। आज की मृग्या अविस्मरणीय थे, मेरे बाण के भी अचूक चूक जाने की संभावना थी। छह, सिर झुकाकर एक वह आदरपूर्वक बोला। प्रत्येक के शरीर में कितने कितने बाण हैं, एक ही एक महाराज, वह पुनः झुककर बोला। उस भयंकर घटना के बाद भी मुझको क्षण भर के लिए हंसी आ गई। मेरे हंसने का कारण उन अश्वसादों में से कोई भी जान नहीं सका। जान सकना संभव ही नहीं था। यदि सचेत होता तो केवल दुर्योधन यह जान सकता था। एक हरण अजगर के भक्ष के रूप में छोड़कर और पांच साथ लेकर हम पठार में से चले, जिस कारण मृग्या के नाम पर मैं दुर्योधन को राजधानी से बाहर लाया था वह सब धरा रह गया। अनपेक्षित घटनाओं के कारण मैं दुर्योधन से कोई बात ही नहीं कर सका। अरण्य पार करते समय एक झरने के किनारे थोड़ी देर के लिए हम रुके। मुंह पर शीतल जल छिड़कते ही दुर्योधन सचेत हो गया। आंखें फाड़ कर मेरी ओर देखते हुए उसने मुझसे पूछा, हम लोग कहाँ हैं? उसके भाल पर सिकुड़नों का जाल था। यह वर्णावत का अरण्य है, हम लोग मृग्या करने आए हैं, मृग्या हो चुकी है। मैंने उसको केवल मृग्या का ही स्मरण कराया। मृग्या, कितने हरिण हैं अपने साथ कर्ण? उसने जोश में आते ही ठीक यही प्रश्न पूछा। पांच, मैं हंसता हुआ बोला। एक हरिण तो हमको पीछे छोड़ना ही पड़ा था, उसको क्यों गिना जाए, यह विचार मैंने मन ही मन रखा। पांच, प्रत्येक शरीर में बाण कितने हैं? एक एक, जो सत्य था वही मैंने कहा। एक एक, सुंदर। थोड़ी देर पहले जो भयंकर संघर्ष हुआ था उसको वचन भर में भूल गया, कम से कम उसने वैसा दर्शाया। उस संबंध में कुछ पूछा नहीं, अपने पांच बाणों से ही पांच हरिण मारे हैं यह सोचकर वह उस अशक्त अवस्था में भी जोर लगाकर कूद कर घोड़े की पीठ पर चढ़ गया। अरण्य छोड़कर नगर की ओर हमारे घोड़े स्वच्छ चादरी में दौड़ने लगे। लगभग मध्यरात्रि में हमने पुनः दोनों नदियां पार कर फिर हस्तिनापुर में प्रवेश किया। सीमा पार करते समय मैंने सभी अश्वसादों को रोककर कठोर शब्द में चेतावनी दी, ध्यान रखो अरण्य की एक भी बात भवन में किसी को ज्ञात नहीं होनी चाहिए, जाओ। 22, महाराज ने आपको स्मरण किया है, अमात्य वृष वर्मा अलग सवेरे ही मेरे सामने खड़े थे। यह संदेश लेकर कुरुओं के अमात्य स्वयं क्यों आए हैं? सेवक क्या केवल पाकशाला में अन्न पर हाथ साफ करते रहते हैं? नहीं, मैं आया हूँ आपका अभिनंदन करने के लिए। आपके कारण ही कल युवराज दुर्योधन के प्राण बचे, धन्य है आपकी धीरता, हाथ उठाकर फड़काते हुए वे बोले। अमात्य, आपसे किसने कहा यह? शब्दों की कठोरता का पता चल जाए, इतनी तीव्रता से मैंने कहा। स्वयं युवराज ने ही विमंद स्वर में बोले, ठीक है महाराज से मिलने के लिए मैं जा रहा हूँ, आप दुग्धपान करके ही जाएं। मैंने व्यर्थ ही कठोर शब्द प्रयुक्त किए, यह जानकर अब यथाशक्ति मृदु स्वर में ही मैंने उनसे कहा, मृणाल ने सुवर्ण तबक लगा दूध का रूपहला चषक और फलों की थालियां माता के सामने रख दी। राज वस्त्र परिधान करने के लिए मैं वस्त्रागार में गया। महाराज ने इतनी जल्दी क्यों बुलाया, इसके कारण समझ में नहीं आ रहा था। वस्त्र परिधान करते ही अमात के पीछे पीछे महाराज के महल की ओर चल दिया। उनके महल से पहले युवराज की दुशाला देवी का महल था। वे प्रातःकालीन स्नान कर सामने सौंत पर अपने आर्द्र केशों को कोमल किरणों में सुखाते हुए खड़ी थी। उनके बालों पर कंघी फेरते हुए उनकी दासी ने हमारे आने की सूचना उनको दे दी होगी। ये दोनों ही तत्परता से सौंत पर से महल में चली गई। अपने ससुराल सिंधु देश से युवराज हाल ही में वसंत उत्सव के लिए पीहर आई थी। उस महल के द्वार से गुजरते समय किसी वस्तु को मेरे पैर की ठोकर लगी। उतावली में भीतर जाते समय दासी कंघी भूल गई थी। मैंने झुककर वह उठा ली। उसके दांत बड़े तीक्ष्ण थे, कठोर शीशम की लकड़ी की थी वह। उसके दांतों की तीक्ष्णता एक बार देखने की इच्छा से मैंने यूं ही उस पर तर्जनी फेरी। सौंत के प्रशस्त पाषाण पर वह कंघी पुनः रख कर मैं थोड़ा आगे बढ़ गए। अमाते को पकड़ने के लिए तेजी से चलने लगा। महाराज के महल में प्रवेश करते ही अमात ने खास कर किसी के आने की सूचना चतुराई से उनको दी। उस आवाज को महाराज ने पहचान लिया। अपने जन्म से ही मुदी हुई आंखों को हिलाते डुलाते हुए बोले, कौन आमात्य, क्या हुआ? अंगराज आए हैं महाराज। युवराज दुर्योधन के पैरों पर औषध चूर्ण बांधने के लिए मैं राजवैद्य के पास जा रहा हूँ, जाइए आप। आमात चले गए। महल में क्षण भर नीरव शांति छाई रहे। बैठिए अंगराज, आसन की ओर सफल निर्देश करते हुए वे बोले, वंदन करता हूँ महाराज। मैं झुककर अभिवादन कर आसन पर बैठ गया। जिस दिन मैं हस्तिनापुर में आया था उसी दिन इसी राजा ने प्रेम से मुझको अपने पास बुलाकर अपने हाथों से मेरे कुंडलों को टटोला था। समय आने पर सम्मानी योद्धाओं में मेरी और मेरी धनुर्विद्या की मुक्तकंठ से प्रशंसा की थी। राजदंड उठाकर अखाड़े की सहस्त्रार्ध स्पर्धा में भाग लेने का अवसर मुझको दिया था। मेरे और विशाली के विवाह में दान के लिए कुरुओं का भंडार खोल दिया था। वे महाराज यही थे, मुझ जैसे नगण्य व्यक्ति को उन्होंने विशुद्ध प्रेम ही दिया था। मुझको क्यों स्मरण किया है महाराज ने? उनकी शुभ्र दाढ़ी की ओर देखते हुए मैंने विनय से पूछा। अंगराज? नहीं महाराज, अंगराज नहीं, कर्ण। मैंने उनको बीच में ही टोका। कर्ण, तुम्हारे इन अद्वितीय गुणों से ही मुझे आशा की एक सूक्ष्म किरण दिखाई देती है। तुम्हारी विनय, तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारी सहनशीलता, सब कुछ तुम्हारे कुंडलों की तरह ही अद्भुत है। कल की मृगया में तो तुमने हमारे ऊपर अगणित उपकार। महाराज, उपकार कैसा? मैं दुर्योधन को अपने शोण से भी कम नहीं मानता। तुम्हारे उससे ये संबंध और बढ़े। कल मृगया में तुमने उसका जो साथ दिया वह जीवन भर देना। तुम्हारा अवलंबन मिलने पर ही वह कुछ आशा है, नहीं तो क्या महाराज? पांडव वनवास से लौटने पर उसको जीवित नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए मेरा मन भय से थर थर कांपता है। मैं सोचता हूँ कि राज्य का आधा भाग उनको देकर मुक्त हो जाऊं। पांडव, पांडव, उन्होंने दुर्योधन के वध की प्रतिज्ञा की है, इसीलिए आप भी सबकी तरह उनको अजय समझते हैं क्या? समय आने पर मैं अच्छी तरह उनसे कह दूंगा कि दुर्योधन कर्ण की सुदृढ़ म्यान का धारदार खड्ग है। किसी समय मेरी भी यह उत्कट भावना ही थी कि राज्य का आधा भाग उनको दे देना चाहिए, परंतु जिस राज्य के उत्तराधिकारी न वे हैं और न कौरव हैं, दोनों में से कोई नहीं है, उस राज्य का राजदंड कौन अपने हाथ में रखे इसका निर्णय अब पौरुष करेगा। युद्धभूमि में ही उसका निर्णय होगा। नहीं कर्ण, पांडवों के प्रति जो वैराग्य सुलग रही है उसको अकेला दुर्योधन नहीं सह पाएगा। उसकी पीठ के पीछे तुम सर्वदा तन मन धन से खड़े रहोगे क्या? महाराज, यह वचन तो मैं दुर्योधन को बहुत पहले ही दे चुका हूँ। आज आपके संतोष के लिए पुनः आपसे कहता हूँ कि पांडवों की शक्ति बढ़ने से पूर्व ही दैत्यवन में उनका विनाश करके ही लौटूंगा। राधे, तुम्हारे मुख से यह तीक्ष्ण निश्चय सुनकर यह बात सत्य नहीं लगती कि तुम अधिरथ के पुत्र हो, राधा तुम्हारी माता होंगी, इस पर मुझको विश्वास ही नहीं होता। नहीं महाराज, मैं उन्हीं का पुत्र हूँ और आज मुझे उन पर गर्व भी है, क्योंकि पिताजी जैसा कि आप समझते हैं सूत नहीं है, वे साक्षात महाराज ययाति के वंशज हैं। क्या कह रहे हो कर्ण? तुम्हारे पिता अधिरथ महाराज ययाति के वंशज हैं? थोड़ी देर रुककर महाराज गंभीरतापूर्वक बोले, तो फिर पितामह भीष्म के बाद तुम ही एक कुरु हो। कर्ण, यदि यह सत्य है तो तुम्हारा कथन मुझको ही सदैव मान्य रहेगा। वे तत्क्षण आसन से उठकर खड़े हो गए। हाँ महाराज, मैं सत्य ही कह रहा हूँ, इसीलिए पांडवों से समझौता अब असंभव सा है। चलता हूँ मैं, अभी मुझको प्रातःकालीन दैनिक कृत्य करने हैं। मैंने आसन से उठकर उनको अभिवादन किया। जाओ, उन्होंने हाथ उठाकर मुझको विदाई दी। मैं उनके महल से बाहर निकला। आते आते दुशाला देवी के महल के सामने सौंद पर रखी कंघी देखने के लिए मैंने सहज ही उस ओर देखा, वहां कुछ भी नहीं था। दैत्यवट के पांडव युद्ध के लिए कैसे प्रवृत्त हो सकेंगे, यह विचार करते ही मैं अपने महल में आया। मृगया में धूल से सने हुए मेरे वस्त्र एकत्रित कर उनको धोने के लिए सुप्रिया एक दासी को दे रही थी। उनमें से एक अधरी हाथ में उठाकर वह विनोदपूर्वक बोली, इस अधरी का रक्त के धब्बे हैं। मृगया के हरण क्या आप ही ढोकर लाए थे? नहीं, यह हरण के रक्त के धब्बे नहीं है। फिर किसके हैं? यह तुम्हें बताना ही पड़ेगा क्या? आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है, वे अजगर के रक्त के हैं, यह मैं जानती हूँ। तुमको किसने बताया है? मैंने यह सुना कि स्त्रियाँ अपने पास कुछ भी गुप्त नहीं रख पाती, परंतु दूसरों से भी रहस्य को इतनी सरलता से प्राप्त कर सकती हैं, उसका अनुभव मैं पहली बार ही कर रहा था। महारानी भानुमति ने, उसने हंसते हुए उत्तर दिया, संसार की सभी स्त्रियाँ दूसरी स्त्रियों के वश में होती हैं, यह कथन असत्य नहीं था। दुर्योधन, भानुमति, इस प्रकार अजगर की घटना अब सुप्रिया तक आ पहुँची थी। एक दिन में ही वह संपूर्ण राजभवन के ज्ञात हो जाएगी। मैंने जैसे हिमालय ही उल्टा कर दिया हो, यह सोचकर घिघियाते हुए अनेक लोग अब मेरी अमर्यादा स्तुति करेंगे। जिससे मुझको घृणा थी, वह मुझको अब यत्र तत्र सर्वत्र सुननी पड़ेगी। दास वस्त्र लेकर चली गई। मैंने सुप्रिया के पास जाकर उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों में झांकते हुए कहा, सुप्रिय, तुम महारानी की सखी थी, इसलिए उन्होंने तुमको सब कुछ बता दिया, परंतु अब तुम उनकी सखी नहीं हो, मेरी पत्नी हो। जो मैं कहूँगा वही तुमको मानना पड़ेगा। अर्थात मैं आपकी बात कभी मानती नहीं हूँ, यह कहना चाहते हैं क्या? नहीं, लेकिन तुमको भानुमति ने जो कुछ बताया है यह तुम अन्य किसी से मत कहना, समझी? मेरे कुटिलों की शपथ लो, इसमें से एक भी शब्द वैशाली को ज्ञात नहीं होना चाहिए। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मुझको झुककर मेरे आगे बढ़ाए हुए कुंडलों पर हाथ रखकर वो बोली, काका। ठीक इसी समय अपनी माता के साथ महल में आई हुई मीनाक्षी ने मुझको पुकारा। हमारा एकांत भंग हो रहा है, इस विचित्र विचार से उसकी माता शोण पत्नी मेघमाला आंखें निकालकर उसको डांट रही थी। मीनाक्षी की बांह पकड़कर वह जैसे आई थी वैसे ही महल के बाहर जाने के लिए मुड़ी। मेघमाला सचमुच ही शोण की पत्नी की तरह शोभा देती थी। अपने लिए औरों को कष्ट हो या वह बिल्कुल नहीं चाहती थी, उसको रोकने के लिए मैंने मीनाक्षी को पुकारा, मीनू। वे दोनों ही रुक गई। मेरी गोद में खेली हुई मीनाक्षी काका कहते हुए दौड़कर मेरे पास आई। 8-10 वर्षीय उस बालिका का स्वभाव निर्जर जैसा निर्मल था। अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे हाथ की उंगलियां पकड़ती हुई वह बोली, काका, नगर के मंदिर में तुम चलोगे क्या? मंदिर में? मीनू, मेरा मंदिर तो इस समय प्रतिदिन गंगा के किनारे होता है, क्या यह तुम्हें मालूम नहीं? वह क्यों मंदिर चलने की कह रही थी यह समझ में न आने के कारण मैंने सुप्रिया की ओर देखा। हम दोनों अब मंदिर जाएंगे, मीनाक्षी को पकड़ते हुए मेघमाला की ओर देखकर सुप्रिया ने स्पष्टीकरण दिया। क्यों? मैंने मीनू के हाथ से उंगलियां छुड़ाते हुए कहा, आपके प्रिय भाई के लिए मेघमाला ने एक व्रत रखा है, नगर के उमा मंदिर में आज उसकी पूर्ति है। देवर शोण सचमुच बड़े भगवान हैं, वह हंसकर मेघमाला की ओर देखते हुए बोली, वाह मेघमाले, अपने पति के कल्याण के लिए कितनी सावधान हो। शोण सचमुच ही भाग्यवान है, नहीं तो मैं भी हूँ, मेरी दो पत्नियां हैं। फिर भी, मैंने सुप्रिया को निरुत्तर करने के लिए परिहास करते हुए कहा, साक्षात देवता के लिए कैसा व्रत रखा जाए और किस देवता का रखा जाए? सुप्रिया सिर झुकाकर बोली, मैं ही निरुत्तर हो गया। यह कहा जाता है कि स्त्रियां अंधश्रद्धालु होती हैं या नितांत असत्य है, वे ही अधिक यथार्थवादी होती हैं। परमेश्वर को खोजने के लिए अश्वत्थामा जैसे तत्वचिंतक अव्यक्त ही की ओर दौड़ते हैं, परंतु सुप्रिया जैसी कुशल स्त्रियां उस समीप परमेश्वर को अपने पति में ही बांध रखती हैं। परमात्मा के संबंध में प्रत्येक व्यक्ति के विचार भिन्न भिन्न होते हैं, यह बात अश्वत्थामा ने मुझको बार बार कही थी। मैंने भी मान ली थी, परंतु सुप्रिया का विचार सुनकर मुझको उसकी तीव्र अनुभूति हुई। परमात्मा के संबंध में पुरुषों के और स्त्रियों के विचारों में महान अंतर होता है। जब कुछ नहीं सूझता है तब किसी सशक्त और धैर्य देने वाले विचार को पाने के लिए पुरुष आकाश के नीले खोखले पन की ओर देखता है, परंतु ऐसे समय में स्त्रियां झुककर धरती में पड़े हरे पावड़े की ओर देखती है। विचारों में यह मूल अंतर है। पुरुष सदैव अव्यक्त की ओर, स्त्री सदैव व्यक्त की ओर आकर्षित होती है। पुरुष का आदर्श है आकाश, धरती का स्त्री का धरती। सुप्रिया ने नई अतलसी साड़ी पहनी, मेघमाला के साथ वह उमा के मंदिर की ओर चल दी। उन दोनों ने ही झुककर मुझको वंदन किया। अबोध मीनाक्षी पास पूर्वत खड़ी थी, उसका हाथ पकड़कर उसकी माता मेघमाला उसको मेरे चरणों पर मस्तक रखने के लिए बलात् डांटने लगी। मैंने मीनाक्षी की भुजा पकड़कर उसको उठाकर उसके बाल मस्तक का अवग्रहण किया। मेरे मन में आया, जीवन मीनाक्षी की तरह अबोध और निरागस होना चाहिए। वे तीनों महल से बाहर चली गई। सूर्य किरणों के लिए तृष्णार्थ मेरी पीठ मुझको महल में चुपचाप नहीं बैठने दे रही थी। सूखे वस्त्र लेकर मैं भी बाहर निकला। 23 मृगया के समय मैं दुर्योधन से जो नहीं कह सका था वह विवश होकर अब तो बताना ही था। महाराज कमन में पांडवों का कांटा खटक रहा था और मेरा मन वह तो इतस्तत भड़के हुए बड़वानल में चक्रवाक पक्षी की तरह झुलस रहा था। उनके कारण ही, केवल पांडवों के कारण ही अपमान के स्याह काले मेघों ने मेरे संपूर्ण जीवन आकाश को घेर रखा था। अश्वत्थामा का कथन सत्य था, बचपन में जन्मा हुआ रक्त अब एक कठोर गांठ बन चुका है। अब मेरी सरल गति भी जगत को वक्र ही दिखाई देती। ऐसी स्थिति में टेढ़ा चलना ही क्या बुद्धिमत्ता नहीं थी? पांडवों के संबंध में मेरा मन अब भावना शून्य हो गया था। जैसे भी बने वैसे उनकी जूती उन्हीं के सिर पर रखी जाए। शकुनी मामा की स्पष्ट राजनीति का यह मार्ग मुझे भी मुग्ध कर रहा था। उनके भय का सुतीक्ष्ण खड्ग सिर पर टंगा होने पर दुर्योधन का राज्य कर सकना संभव नहीं था। वह यज्ञ में संविदा अर्पण करने वाला ऋषि तो था नहीं। अर्घ्यदान कर लौटते ही मैंने प्रबंधन द्वारा उसके पास संदेश भिजवाया, कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी है। यह सुनते ही अपने घायल पैर पर पट्टी बांधने के लिए आए हुए राजवैद्य को खड़ा खड़ा छोड़कर शेन पक्षी की तरह झटपट चलता हुआ वह क्षण भर में मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसकी गति की यह दृढ़ता ही उससे पहली बार मिलते समय मुझे अच्छी लगी थी। उसका निर्णय कभी कभी गलत हो जाता था, परंतु जिस दृढ़ता से वह अपने विचारों को थामे रहता था वह दृढ़ता कौरव पांडवों में केवल दुर्योधन में ही थी। मेरी दृष्टि में राजा कहलाने योग्य दो ही योद्धा हैं, एक दुर्योधन और दूसरे श्री कृष्ण। कहो अंगराज, हाथ की गदा उसने सहजता से घोड़े की पाषाण मूर्ति के सहारे टिका दी। वैशाख की उष्णता से कपाल पर झलकने वाले श्वेत बिंदुओं को अपने उत्तरी से पूछा, दुर्योधन कुछ कहना चाहिए यह सोचकर मैंने होंठ खोले, परंतु नित्य नियमानुसार प्रभंजन की पाषाणा मूर्ति की तरह वहीं खड़ा था। उसकी ओर देखते ही मैं रुक गया। मैं चाहता था कि मेरा कथन युवराज के अतिरिक्त अन्य किसी को भी ज्ञात न हो। प्रभंजन, दुर्योधन बिजली की तरह कड़का। उस पाषाण मूर्ति पर बिजली पड़ते जैसे वह नष्ट हो गई, क्षण भर शांति रही। दुर्योधन, पितामह के वक्तव्य से तुम भी पांडव से लड़ रहे हो, मैंने पूछा। कर्ण, पितामह का पांडव प्रेम आज का नहीं है, वह युगों युगों का है, यह क्या मैं नहीं जानता? उनका कोई भी सत्य कथन अब मेरी दृष्टि में कौड़ी का मूल का भी नहीं है। उनके बताए हुए सत्य को इतना समय बीत चुका है कि आज हस्तिनापुर का राज्य सीधा पुरुषार्थ की स्पर्धा बन गया है। तो फिर उसको जीतने के लिए कुरुओं के अन्य योद्धाओं की प्रतीक्षा करते रहोगे क्या तुम? नहीं, परंतु बहुत सोच विचार करने पर भी अन्य कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है। भीम के सामर्थ्य मेरू को बांधने के लिए कौन सी रस्सी लाऊं? इसके लिए सोचना क्या, मैंने कल ही ससन्न दैत्यवन के पांडवों पर आक्रमण करने का निश्चय किया है। यदि तुम न आ सको तो अपनी सेना मेरे पीछे खड़ी कर दो। अकेले भीम को ही नहीं, उन पांच व्यक्तियों का कर्ण निश्चय नाश कर देगा। यदि इस बात पर तुम्हें विश्वास न होता हो तो? विश्वास क्यों नहीं, मैं जो गरज गरज के संसार से यह कहता हूँ कि कर्ण और दुर्योधन एक ही राजमुद्रा के दो पहलू हैं, यह क्या सत्य है? तुम्हारी ही तरह मेरी भी यही इच्छा है, परंतु इस आक्रमण में पांडव हमसे लड़ने नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? यदि वे वीर होंगे तो जैसे भी हों चुनौती स्वीकार करेंगे। नहीं, हमारी सेना के आहट पाते ही वे दैत्य वन छोड़कर दूसरे वन में चले जाएंगे। उनको लड़ने के लिए विवश करने का एक ही मार्ग है। कौन सा? द्वंद्व युद्ध का तो नहीं? नहीं राधे, तुम्हारे द्वंद्व की चुनौती भी वे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उनको उकसाने का एक ही उपाय है। दारिद्र्य आने पर मनुष्य चिड़चिड़ा हो जाता है। ऐसी स्थिति में उनके सामने यदि कोई किसी तरह का वैभव का प्रदर्शन कर दे तो वह क्रोध से पागल हो उठेगा। अर्थात उनको चिढ़ाने के लिए तुम अपनी संपत्ति का प्रदर्शन वन्य पशुओं से भरे हुए उस घोर अरण्य में करोगे क्या? हाँ, प्रदर्शन ही, परंतु स्वर्ण अलंकार सजे हुई अनेक सुंदर दासियों का। उन दासियों के साथ मेरे भाई पांडवों के सामने सरोवर में जल क्रीड़ा करेंगे और तब नन्हे किसी से न सही परंतु भीम से द्रौपदी क्रुद्ध होकर अवश्य कहेंगे, जो दासियां कल तक मेरे पैर दबाती थी वे ही आज अलंकार सज्जित होकर जल क्रीड़ा कर रही हैं, यह देखने की अपेक्षा तुम मुझको उस पर्णकुटी में बंद कर जला के उन्हें देते। इस भर्त्सना से यदि कोई भड़केगा तो अकेला भीम ही, और तब वह मंदबुद्धि तुरंत ही दासियों पर टूट पड़ेगा। दुर्योधन, ठीक है, भीम अवश्य दौड़ कर आएगा। सरोवर के किनारे हरे खादर के अखाड़े को मैं उसके उन्मत्त रक्त से लथपथ कर दूंगा। सत्यसेन के प्रतूत को सपासप उसकी पीठ पर फटकारते हुए मैं कहूंगा कि आज सचमुच ही मैंने तो हाथ में प्रतूत लिया है और उसे तुझ जैसे वन्य घोड़ों की पीठ पर मारा है। अंगराज, तुम यह सरलता से कर सकते हो, इसीलिए इस घोष यात्रा में तुम्हारे अतिरिक्त अन्य किसी को भी मैं साथ नहीं लेना चाहता। समय को समय के सहायता के रूप में कुछ पदार्थ और थोड़े से सहस्त्र अश्व साथ रहेंगे, यही पर्याप्त है। जो दासी साथ होगी वे भी इंद्रप्रस्थ की, अन्यथा द्रौपदी की क्रुधाग्नि भड़केगी नहीं। राजन, तुम केवल मामा जी के संकेत पर चलते हो, मैं भी यही सोचने लगा था, परंतु आज विश्वास हो गया कि तुम्हारी भी कुछ योजनाएं होती हैं नितांत मौलिक और वे भी बुद्धि प्रसूत। जीवन का अर्थ योजनापति योजनाओं का अखाड़ा होता है। सारा हस्तिनापुर कहता है कि मामा ने कपट से युधिष्ठिर का राज्य जीत लिया, परंतु यह बात उनके ध्यान में नहीं आती कि युधिष्ठिर केवल दांव गंवाने के लिए ही थोड़े बैठा था। यदि हम हार जाते तब पांडव हमारी क्या पंचारती उतारते? नहीं राजन, उस युद्ध की स्मृतियां अब फिर नहीं, उन पासों की चर्चा अब नहीं। मुझको अकारण ही लगा जैसे छाते में कोई तीव्र पीड़ा कसक उठी हो। कहीं कुछ चुभ रहा था, कुछ व्याकुल कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मैं प्रकाश से दूर जा रहा हूँ। द्रौपदी, आ, तीन अक्षरों का वह शब्द त्रिमुखी बाण की तरह हृदय में छिद रहा था। नहीं, वह नाम अब नहीं, वह वस्त्रों का ढेर अब नहीं। चलता हूँ मैं, राजवैद्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आसन से उठकर उसने अपने पैरों की ओर देखता हुआ वह बोला, महल के द्वार से बाहर जाते हुए उसके पृष्ठभाग को देखकर मुझे अखाड़े की स्पर्धा वाला दिन याद आ गया। ठीक वही अमर्ष आज भी उसके नस नस में ज्यों का त्यों था। वर्ष के बाद वर्ष बीत जाते हैं। सांपत्तिक, वैवाहिक, सामाजिक आदि सभी क्षेत्रों में मनुष्य अपना स्थान निश्चित करना जाता है, परंतु स्वभाव व ज्यों का त्यों रहता है। कुछ घटनाएं बदल जाती हैं, परंतु मूल रंग पे ही रहते हैं। वह चला गया और मेरा मन उसकी गदा की तरह चक्कर काटने लगा। जो कुछ मैं कर रहा हूँ क्या वह ठीक है? घोष यात्रा के निमित्त जाकर पांडवों से द्वंद्व युद्ध करना क्या उचित है? मैं अधःपतन की ओर एक एक सीढ़ी तो नहीं उतरता जा रहा हूँ? और यदि ऐसा होता भी हो तो उसमें अनुचित क्या है? भिक्षा के निमित्त जाकर स्वयं श्री कृष्ण ने भीम द्वारा जरासंध को क्या मरवाया नहीं था? पांडव कर्ण यह संघर्ष कब तक अधर में लटका रखा जा सकता था? इसकी भी तो कोई सीमा थी। जो कुछ घटित हो उसको चुपचाप देखने के लिए मैं न तो पितामह था और न महामंत्री विदुर। मैंने दैत्यवन चुना था क्योंकि मेरे लिए वही एक मार्ग था। 24. अलंकार भूषित सैकड़ों दासियों का झुंड कलकल करता हुआ दैत्यवन की ओर चला गया। उनके साथ अकेला प्रभंजन था। इतनी बड़ी संख्या में सज धज कर राजभवन से की चुनी हुई सुंदर दासियां कहाँ जा रही हैं, यह जानने के लिए अनेक ने प्रभंजन को टोका। उसने कुछ न कुछ उत्तर देकर सभी के मुंह बंद कर दिए, परंतु महाद्वार में प्रातःकालीन नित्य कर्म कर लौटते हुए पितामह से उसकी भेंट हो गई। उनके पूछते ही सत्य कहना बात कहनी पड़ी, परंतु वह उसने बड़ी कुशलता से साध कर बताई, ये द्वैतवन में जल किरणा के लिए जा रहे हैं। ग्रीष्म की उष्णता असह्य हो गई, इसीलिए राज ने उनको आज्ञा दी है। तो फिर उसके लिए दैत्यवन ही क्यों? जा, दुर्योधन से कहना कि जल्दी ही मुझसे मिल ले। पितामह वृद्ध हो गए थे, रस्सी जल गई थी, पर अधिकार की ऐठन अभी नहीं गई थी। उन्होंने दुर्योधन को बुलवाया। दुर्योधन, भवन के सुंदर दासियां कहाँ जा रही? दुर्योधन के आते ही उन्होंने श्वेत भाव में तानते हुए पूछा, जल विहार के लिए द्वैतवन में? इसके लिए द्वैतवन ही क्यों? खांडव वन और वर्णावन ठीक नहीं है क्या? ऐसी कोई बात नहीं थी। इन स्थानों पर एक एक बार पहले जल क्रीड़ा हो चुकी है। द्वैतवन सबसे अधिक प्रकृति रम्य होने के कारण इस बार वह चुना गया है। ध्यान रख, उस वन में पांडव रह रहे हैं, उनसे रार बढ़ाने का व्यर्थ प्रयत्न मत कर, नहीं तो द्वित से चिड़ा हुआ भीम उसी सरोवर में तुझे जल समाधि दे देगा। जा, संभल कर रहना। कंधे मुचकाता हुआ दुर्योधन उनके निवास स्थान से बाहर आया, उछले हुए भुजंग की तरह। उसकी रक्तमणि मुख शंकाओं के असंख्य जालों से ऐसा ढका हुआ था जैसे कमल लताओं की जड़ों से सरोवर ढक जाता है। क्यों, क्या हुआ? उसको व्याकुल देखकर सशंक होकर मैंने पूछा। अब इस वृद्धावस्था में जब तब दान धर्म और पूजा पाठ छोड़कर इन पितामहों को के प्राण पांडवों के आसपास से क्यों चक्कर काटते रहते, यही समझ नहीं आता। भीम का डर दिखाकर उन्होंने कठोर शब्दों में मुझसे कहा कि उनकी ओर पैर भी मत रखना। उनके मन का झुकाव तो सदैव पांडव की ओर था, है और रहेगा। राजा के रूप में तुमको भी कुछ करने का अधिकार है या नहीं? कारण दुर्योधन एक बार जो निश्चय कर लेता है वह अटल होता है। फिर रास्ते में मृत्यु स्वच्छंद विचरण कर रही हो तो भी कोई चिंता नहीं। अरिष्टसेन, अश्वसाधों को गुप्त मार्ग से राजभवन छोड़कर दैत्यवन की ओर दौड़ने की आज्ञा दे। उसने समीप खड़े हुए अरिष्टसेन को दैत्यवन की ओर हाथ उठाकर आज्ञा दी। सिर झुकाकर अरिष्टसेन दौड़ता हुआ अश्वशाला की ओर चला गया। क्षण भर बाद राजभवन के गुप्त मार्ग से बाहर निकलते हुए 400-500 अश्वसाध धनछड़ी पक्षियों की तरह एक पंक्ति में दौड़ते हुए उनको सौंत पर से दिखाई देने लगे। घोड़ों के चंचल खुरों से उड़ाई गई धूल का एक बादल चिलचिलाती धूप में गंगा की ओर विशाल छाया अंकित करता हुआ दृश्य हो गया। हम राजभवन के सोपान से उतरकर नीचे आए। दुर्योधन अपने अश्व की और मैं अपने प्रिय वायुजीत की वलगा हाथ में लेकर उनकी पीठ पर छलांग लगाकर चढ़ बैठे। प्राचीर से बाहर निकलते ही हम उनको वायु गति से दौड़ाने वाले थे। वायुजीत अपनी गर्दन को राजहंस की तरह सुंदर मोड़ देकर प्रथम पहर की कोमल किरणों को सादर अभिवादन कर अपने स्वामी की यात्रा के लिए जैसे प्रतीक्षारत था। रमणी के सुकोमल केशपाश को भी लज्जित करने वाले उसके चमचमाते हुए शुभ्र अयाल उसके प्रत्येक पैर के साथ प्रभावशाली ढंग से हिलडुल रहे थे। वह ध्वनि के सूक्ष्म स्पंदन को विग्रहण करने की सामर्थ्य लिए हुए था। उसके कान चपलता से चारों ओर हिल रहे थे। भवन के सभी पशुओं में वह सबसे उत्तम था। शकुनी मामा उसको गांधार देश से विशेष रूप से लाए थे। उत्तम था, इसीलिए मैंने उसको अपने लिए चुना था। अनेक बार उसकी पुष्ट पीठ पर आरोहण होकर मैं यात्रा कर चुका था। मेरे जीवन क्रम की आधी से अधिक कटु मधुर स्मृतियों से उस प्राणी का संबंध था। पशु मनुष्य से भी अधिक प्रमाणिक और एकनिष्ठ होते हैं, यह अनेक बार मेरे सामने प्रमाणित कर चुका था। एक लय में मंद मंद पैर रखता हुआ, हिचकोली खाता हुआ, वह मुझे प्राचीर से बाहर ले जा रहा था। अपने भवन के गवाक्ष से मैं कहाँ प्रस्थान कर रहा हूँ इसका विचार करती मेरी ओर देखती हुई सुप्रिया से मैंने मौन भाषा में आंखों से ही विदाई ली। महाद्वार की देहरी पर उसको पार करते समय वायुजीत अपने दोनों पैरों के खुर मुड़ जाने के कारण गप से इतना नीचे फिसला कि उसकी छाती धरती से लग गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। एक हाथ से वल्गा खींचते हुए दूसरे हाथ से खिसकते हुए किरीट को जैसे तैसे संभाला। शंका की टिहरी मन में के नदी तीर पर क्षण भर कर्कश स्वर में चिल्लाई, यह कोई अपशकुन है क्या? छी, मैंने धरे का पाषाण फेंक कर उसको भगा दिया। हाथों से खींचकर झुकाई हुई चीमड़ वृक्ष की डाल हाथ का तनाव छोड़ते ही पुनः यथास्थान आकर मंद गति स्पंदित होती है, जैसे उसी तरह वायुजीत तुरंत तनकर खड़ा हो गया। उसकी त्वचा क्षण भर सिहरी, पूंछ इधर उधर घूमी, वह एक बार फुरफुराया। मैंने उसके अपने पंजों का अग्रभाग जरा से उसके पेट पर रगड़ा। वह आगे गए हुए दुर्योधन को पकड़ना चाहता था। वायुजीत अपने नाम के अनुरूप वायु के साम्राज्य को जीतता हुआ हवा से बातें करने लगा। 25 देवतवन की घनी झाड़ियां दिखाई देने पड़ने लगी। दूर से शांत दिखाई देने वाला घोर वन गर्भ में के अनेक पशु क्रूर पशुओं का पालन कर रहा था। घोड़े से नीचे उतरकर हम लोग पदस्थ हो गए। वल्गाय हाथ में लेकर चलने लगे। यात्रा से और ग्रीष्म के अंग झुलसा देने वाली उष्णता से सभी के शरीरों पर के राजवस्त्र श्वेत से तर हो गए थे। विश्राम करने के लिए विचार से झरने के किनारे एक विशाल असन वृक्ष के नीचे थोड़ी देर के लिए हम रुके। वृक्ष के तने से घोड़े की वल्गा अटकाता हुआ दुर्योधन बोला, राधेय, अपने 400-500 अश्व तुम्हें कम तो नहीं लगते? हम लोग युद्ध करने नहीं आए हैं, आज तो प्रकट रूप से द्वंद्व युद्ध होगा। एक से नहीं, पांचों से। झरने में उतरकर अंजलि भरकर ठंडे पानी का छिड़काव मुंह पर करते हुए मैंने उसको उत्तर दिया। इतने में ही परले किनारे के झरने के उथले पानी को मंथित करते हुए एक घोड़े पर प्रभंजन हमारी ओर आता दिखाई दिया। घोड़े को दौड़ाते समय उसके जो चंचल क्रियाकलाप हो रहे थे उनसे किसी महान भय की छाया स्पष्ट दिखाई पड़ रही थी। पास आते ही नीचे उतरे बिना ही वह रास और श्वास दोनों को एकदम रोकता हुआ झरने के मध्य में आकर खड़ा होकर वहीं से डरता रहता चिल्लाया, महाराज, वन के सरोवर में गंधर्व स्त्रियां पहले से क्रीड़ा कर रही हैं। सरोवर के किनारे उनमें और हमारी नासियों में गुत्थों गुत्था हो रही है। कोई किसी से हार नहीं मान रहा है। चलो प्रभंजन, तुम आगे चलो, हम अभी आ रहे हैं। हाथ उठाकर दुर्योधन ने उसको वापस भगा दिया। हमारे घोड़े भी झरने का पानी काटते हुए देवतवन की ओर दौड़ने लगे। रास्ते में आगे निकली हुई लताएं हमारी खुली भुजाओं पर सपासप टकराने लगे। प्रभंजन के घोड़ों के खुरों का अनुसरण करते हुए अनेक कठिन मोड़ों को पीछे छोड़कर हम लोग वन के मध्य भाग में से समतल पठार पर सरोवर के किनारे आए। सामने जो दृश्य देखा उसको हम दोनों भी अच्छी तरह समझ नहीं पाए। दासियां और गंधर्व स्त्रियां मुट्ठी में प्राण लेकर सरोवर के किनारे पंक्ति में खड़ी थी, अवाक और निश्चल। पठार पर मुक्त प्रांगण में हजारों गंधर्व सैनिकों ने हमारे अश्वसाथ घोर युद्ध कर रहे थे। अपनी संख्या और सामर्थ्य का उन्होंने बिल्कुल ही विचार नहीं किया था, उनको इतना अवसर भी न मिला होगा। गंधर्वों की सेना के बीच एक लंबा और सुंदर सेनानायक हस्तस्थ खड्ग को बिजली की तरह अपने चारों ओर घुमाता हुआ गर्जन कर अपनी सेना को प्रोत्साहित कर रहा था। चित्रसेन उसको देखते ही दुर्योधन बुदबुदाया। वह गंधर्व नायक चित्रसेन था। द्वैतवन ही के आसपास समस्त प्रदेश में उसके नाम का इतना दबदबा फैला हुआ था कि अरण्य में रहते हुए भी कोई राक्षस कभी उसके पास पटकने का साहस नहीं कर सका था। हमारे दासियों ने उसकी प्रिय स्त्रियों को छेड़कर बड़े भारी संकट को निमंत्रण दे दिया था। वीरतापूर्वक लड़ने वाले हमारे अश्वसाथों को गंधर्व सेना चारों ओर से प्रतिक्षण घेरती चली आ रही थी। दुर्योधन, तुम इस पंक्ति को तोड़ो। दाएं ओर से गंधर्व सेना पर खड्ग निकालकर चपटते हुए मैंने उसकी बाईं ओर संकेत किया। सोच विचार करने को समय नहीं था। सपासप पार करता हुआ मैं सेना में घुस गया। उसके घिरे हुए सैनिकों को मुक्त करने के लिए मैंने जोरदार आक्रमण पर एक बार को तो उनके आसपास के घेरे को तोड़ भी दिया, परंतु दूसरे ही क्षण उनको उत्साह से भरे हुए नए गंधर्वों ने फिर घेर लिया। कहीं से गर्जन करता हुआ स्वयं चित्रसेन मेरे सामने आ डटा। क्रोध से संतप्त होने के कारण वह पलाश वृक्ष जैसा रक्तवर्णी दिखाई पड़ रहा था। कर्ण, अपने सैनिकों को लेकर इस वन से चलते बनो या फिर मरने को तैयार हो जाओ। कर्ण के नशे तानता हुआ वह जोर से चिल्लाया, चित्रसेन मैं कर्ण हूँ, पवन के झोंकों से पर्वत शिखर हिला नहीं करते, तैयार हो जाओ। उसकी अहंकार भरी घोषणा से मैं क्रुद्ध हो उठा। क्रुद्ध होकर वह मुझ पर टूट पड़ा। जैसे ही हम दोनों भिड़ंत हुई, दोनों पक्षों के सैनिक दूर हो गए। घड़ी डेढ़ घड़ी तक तो खनखनाते हुए खड़ की विद्युत की तरह एक दूसरे पर टकराते रहे। उनके टकराते हुए पलों से चिंगारियां उड़ रही थी। चित्रसेन का खड्ग स्थान स्थान पर मेरे शरीर को स्पर्श कर रहा था, परंतु उसके जीवा को चाटने के लिए रक्त की एक बूंद तक नहीं मिली थी। पैरों के नीचे घास उद्धस्त हो गई थी। अचानक रुककर खड़े खड़े युद्ध देखते हुए अपने गंधर्व सैनिकों को चित्रसेन ने आज्ञा दी, यह अभेद्य कवच वाला हस्तिनापुर का कर्ण है, यह खड्ग युद्ध में, धनुर युद्ध में, गदा युद्ध में किसी से भी नहीं मरेगा। इसको चारों ओर से घेर कर जीवित पकड़ लो। अब वहां ठहरना व्यर्थ था। अश्वसाधो, दासियों को लेकर लौटो। उसके सैनिक मुझको घेरे, उसके पूर्व ही पूंछ हिलाकर घास चढ़ते हुए आयुज की पीठ पर आरूढ़ होकर मैं चिल्लाया। प्रत्येक अश्वसाध ने एक एक दासी को घोड़े पर बैठा लिया और मेरे पीछे दौड़ना प्रारंभ कर दिया। सहस्त्रों गंधर्वों ने हाथ में लगे हुए शस्त्रों को अंतिम प्रहार के रूप में हमारे ऊपर छोड़कर शस्त्रों की वर्षा कर दी। उनके अचूक प्रक्षेपण से बहुत से अश्वसाध धड़ाधड़ धरती पर गिर पड़े। जो सुरक्षित रहे वे दौड़ने लगे। पुनः सपासप टकराते हुए लताओं के आघात सहते हुए हम एक के बाद एक मोड़ों को पीछे छोड़ने लगे। घोड़े दौड़ रहे थे, धूल उड़ रही थी, परंतु मेरा मन टूक टूक हो गया था। यह पराजित होकर रणभूमि से पलायन था या सुरक्षा के लिए सावधानीपूर्वक पीछे हटना था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। किस उत्साह से मैं राजभवन से बाहर निकला था और अब क्या साथ लेकर लौट रहा था। महाद्वार की देहरी पर लचकता हुआ वायुयुद्ध मेरे जीवन क्रम में पहली पराजय को कहीं नांदी तो नहीं थी क्या? पराजय, पलायन, पीछे हटना, अपूर्ण सामर्थ्य से लड़ने की अपेक्षा पीछे हटना क्या उचित नहीं था? चित्रसेन मुझको पकड़ लेता तब सुदामन के क्रूर वध का पाप फिर अर्जुन के गले में कौन डालता? मेरा शत्रु कौन था, अर्जुन या चित्रसेन? मेरा मन मेरे निर्णय में अचूक व्यवहार ढूंढ रहा था। अर्जुन का कर्ण छेद करने के लिए मेरा जीवित रहना आवश्यक था। वायुजीत के टापों के साथ ही विचारों के अनेक मोड़ मन के पीछे छूट रहे थे। घोष यात्रा कर्ण की दृष्टि से आज दोष यात्रा का रूप धारण कर रही थी। जीवन का अश्व कीर्ति के महाद्वार पर कहीं लचक रहा था। पराजय, पहली पराजय, परिस्थिति या निर्मिति, चाहे जिस कारण से हो, पीछे हटने का अर्थ पराजय ही है। कर्ण, पराजय, पराजय, कर्ण, कुछ भी सूझ नहीं रहा था। सूझ भी रहा था तो मन उसको स्वीकार नहीं कर रहा था। अब दुर्योधन क्या सोचेगा, किन शब्दों में वह मेरा स्वागत करेगा? दुर्योधन, उसका स्मरण होते ही मैंने वायुजीत की वलका एकदम खींची। जहाँ हम विश्राम करने के लिए रुके थे वह झरना आ गया था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, भागने वालों में दुर्योधन कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा था। मेरे हृदय में भय की एक विचित्र सिहरन सी दौड़ गई। सहस्त्रों गंधर्वों के बीच युद्ध के झमेले में दुर्योधन अकेला फंसा तो नहीं रह गया? उसको कहीं कुछ हो गया तो कौन सा मूल्य कर मैं हस्तिनापुर लौटूंगा? अरिष्टसेन, राजा पीछे अकेला रह गया, घोड़ा लौटाओ। सबको रोक कर मैंने पुनः दैत्यवन की ओर हाथ उठाया। महाराज, गंधर्व सेना असीम है, राजधानी पहुंचकर फिर सेना लेकर लौटेंगे। नहीं तो हम लोगों की चर्चा तक हस्तिनापुर नहीं पहुंच पाएगी। उसका कथन उपयुक्त था। क्या किया जाए यह समझ में नहीं आ रहा था। यदि फिर दैत्यवन की ओर लौटा जाए तो शायद कोई भी हस्तिनापुर नहीं लौट सकेगा। यदि राजधानी को जाया जाए तो वह भी यहाँ से अनेक योजन दूर रह गई थी। झरने के किनारे उसी असन वृक्ष के नीचे काले पाषाण पर मैं बैठ गया। अरिष्टसेन को राजधानी भेजकर सेना लाए बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता था। उसके साथ नगर जाकर अपनी हंसी उड़वाने में भी कोई तुक नहीं थी। अरिष्टसेन को राजधानी की ओर भगाया। मैं न तो दैत्यवन में ही था और न राजधानी में ही था, बीच में ही तो शंकु की तरह लटके हुए मेरी दशा बड़ी विकट हो गई थी। एक एक क्षण महत्वपूर्ण था। मस्तिष्क की भूषण्ड विचारों के पाषाण फेंक रही थी। मैं मस्तक को कसकर दबाए बैठा हुआ था। विवस्था, विवस्था क्रूर मारजार हो जैसी होती है। वह मनुष्य को चूहा बना देती है, न तो मरने ही देती है, न जीवित ही छोड़ती है। आज चित्रसेन का रूप धारण कर अनपेक्षित रूप में वह मेरे सम्मुख आ खड़ी हुई थी। अरिष्टसेन को गए आधी एक घड़ी हो चुकी थी। दुर्योधन का पता नहीं था। अब रुकना व्यर्थ था। उठकर वायुजीत की रास हाथ में लेकर मैं अकेला ही द्वैतवन में प्रवेश करने लगा। किसी भी अश्वसाध को मैं अपने साथ मरण के महाद्वार पर नहीं ले जाना चाहता था। यदि दुर्योधन की मृत्यु गंधर्व सेना के हाथ से होने वाली हो तो कर्ण को भी अपने लिए वही मृत्यु स्वीकार थी। पीछे मुड़कर देखे बिना ही मैंने पुनः दैत्यवन में प्रवेश करने के लिए घोड़े पर छलांग लगाई। मेरा मन अब शांत और गंभीर था। किसी प्रकार की उथल पुथल उसमें नहीं थी। धीरे धीरे पैर रखता हुआ वायुजित भी जड़ मन से चलने लगा। वह घनी झाड़ियों में होकर भीतर घुसने ही वाला था कि दुर्योधन बाहर निकला। उसके दोनों हाथ रामेटा के फूलों की चीमड़ बेलों से कसकर बंधे हुए थे। जीवन में पहली बार मैं उसको नतमस्तक देख रहा था। कभी कभी सत्य कल्पना से भी अधिक भयानक होता है। उसके देह पर राजवस्त्र यत्र तत्र कट गए थे। घिसटता हुआ भारी पैरों से वह जैसे तैसे चलता हुआ आ रहा था, आयाल कटे हुए सिंह जैसा। राजन उसको सुरक्षित देखकर आनंद से घोड़े से कूदकर उसको आलिंगन में भरता हुआ वह जोर से चिल्लाया, लेकिन उसका सिर फिर भी न ऊपर उठा। जल्दी जल्दी उसके हाथ के चारों लिपटी हुई लताओं को खोलता हुआ उसको संतुष्ट करने की इच्छा से मैं बोला, तुमको मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय करके ही मैं लौटा था और तुमको ढूंढ रहा था। फिर भी आनंद से उसका मुख कमल खिला नहीं, भीग कर झुकी हुई वृक्ष की शाखा की तरह उसका झुका हुआ सिर उठा ही नहीं। वह मेरे सम्मुख पाषाण प्रतिमा की तरह निःशब्द खड़ा था। दुर्योधन योद्धाओं के साम्राज्य का गदा दंड की तरह सुदृढ़ वीर दंडल से टूटे हुए कमल पुष्प की तरह सिर झुकाए खड़ा था। उसको मेरी एकनिष्ठ मित्रता पर भी क्या संदेह होने लगा था? वह इसको कर्ण का पलायन ही मान रहा था क्या? अंगराज माया हस्तिनापुर लौट कर नहीं जाऊंगा, इस वृक्ष के नीचे ही आसन लगाकर मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। उसका प्रत्येक शब्द पैरों में बधे हुए भारी श्रृंखला जैसा लग रहा था। क्यों, क्या हुआ? राजा के प्राण कोई ऐसी नौका नहीं होती जिसको जब चाहे मृत्यु की महानदी में छोड़ दिया जाए। यह राजधर्म क्या तुम भूल गए हो? कैसा राजधर्म, कैसा राजा? जो सम्मानपूर्वक संसार में जी नहीं सकता वह राजा कैसा? हुआ क्या है? तुम्हें अकेला पाकर चित्रसेन ने यदि तुम्हारा अपमान किया हो तो मैं उसको नहीं कर। चित्रसेन यदि मेरे सिर को धड़ से अलग कर पैरों तले रौद देता तो रणभूमि की उस विशाल वैभवशाली मृत्यु को मैं विहंस कर स्वीकार कर लेता। परंतु साक्षात शत्रु के हाथ से जीवन की भिक्षा लेकर मैं इस बद्धहस्त दशा में लौटा हूँ। वीर के मरण से वीरत्व का मरण भयानक होता है। मैं राजा नहीं हूँ, गदावीर नहीं हूँ, सम्मान सहित जीने वाला साधारण सैनिक भी नहीं हूँ। तुमने अभी अभी जो लताएं खोली हैं इनके पत्तों के बराबर भी अब मेरे जीवन का महत्व नहीं रहा है। क्यों ऐसी बातें क्यों करते हो? किसने दी है तुम्हें जीवन की भिक्षा और तुमने वह कैसे ली? तुम लोगों के जाते ही मैं अकेला रह गया। गंधर्व सेना ने मुझको घेर लिया। एक ही समय सहस्त्रों गंधर्व मुझ पर टूट पड़े। उन्होंने मेरे अस्त्र छीन लिए और दोनों हाथ लताओं से बांध कर मुझको बंदी बना लिया। लगभग सभी गंधर्व सरोवर छोड़कर विजय की घोषणाएं करते हुए निकल गए। चित्रसेन और 400-500 पदाति मुझको लेकर अज्ञात स्थान की ओर चले। इतने में ही क्या हुआ? कौन आया? अर्जुन। उसने बिना किसी सोच विचार के चित्रसेन को ललकारा और उसके गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों से सरोवर फटने की नौबत आ गई। चित्रसेन मुझको उसी अवस्था में छोड़कर भाग गया। हाथ बधे हुए थे, अन्यथा चित्रसेन को रोककर मैं स्वयं ही अर्जुन पर टूट पड़ता। चित्रसेन के जाते ही वह मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। भैया के आदेश से मैंने तुमको मुक्त किया है, फिर कभी दैत्यवन की ओर मत आना। उसने मिथ्या विजय के अहंकार से ऐसे लहजे में मुझसे कहा जैसे दैत्यवन उसके पिता का राज्य हो। उसके साथ एक विरूप राक्षस पुत्र था, वही मुझको यहाँ लाकर छोड़ गया है। मुझको मुक्त करने वाले अर्जुन ने मुझको अपमानित करने के लिए इन लताओं को यूं ही रहने दिया था। कहो कर्ण, राजा के रूप में क्या मुँह लेकर अब मैं नगर की ओर लौटूं? टूटे हुए पंख वाले गरुण को पर्वत शिखर की कामना क्यों करनी चाहिए? मैं यही प्रायोपवेशन करूंगा, जाओ तुम। उसके आहत मन का रक्त शब्दों का रूप धारण कर होठों से बाहर टपक रहा था। इतनी तीव्र निराशा उसके जीवन को कभी छू तक नहीं पाई थी। उसकी कलाई लताओं की ऐठन से और मन अर्जुन के शब्दों से काला पड़ गया था। साक्षात शत्रु से जीवन का दान लेते समय जो मरण प्राय यातनाएं हुई थी उनका अनुभव वही कर सकता था जिसके पास दुर्योधन जैसे हस्तिनापुर के सम्राट का मन हो। उसको सांत्वना देने के लिए मेरे पास भी कुछ शब्द नहीं थे। तुमको नगर की ओर लौटना ही पड़ेगा। तेज की अखंड आग उड़ेड़ने वाले सूर्य नारायण को कभी कभी ग्रस्त होना पड़ता है। बादल जिससे जन्म लेते हैं उसी महासागर पर पागलपन भरे अहंकार से कृपा के जलवृष्टि करते हैं। क्या यह देखा नहीं है तुमने? कौन किसको जीवन देता है? जलासंध के 17 आक्रमणों से परेशान होकर मथुरा छोड़कर द्वारका का रास्ता पकड़ने वाले कृष्ण को संसार ने क्या भगोड़ा माना? पितामह भीष्म द्वारा विजित जगदम्नि पुत्र परशुराम क्या पराजित योद्धा माने गए? पराजय के चक्र से जो बच नहीं सका था तथा जिसको नहुष महाराज ने पालकी में जोत लिया था, उस देवराज इंद्र को तुम जानते नहीं हो क्या? क्षत्रिय प्रापयोपवेशन कर नहीं सकते बल्कि मना करते हैं। समरांगण में तपते हुए सूर्य के किरणों में शरीर की चेतना किरण विलीन करने के लिए ही उनका जन्म होता है। यह पकड़ो। अष्टसेन द्वारा लाए गए घोड़े की लाश मैंने उसके हाथ में दे दी। थोड़ी देर बाद दुर्योधन सचेत हुआ। कर्ण, नगरजन तुम्हें सुतपुत्र कहते हैं, लेकिन तुम्हारी बातों को सुनकर इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। मैं यहाँ कृमि कीटकों की तरह नहीं मरूंगा, चलो। वह कूद कर घोड़े पर आरूढ़ हो गया। मैंने उसकी मुक्ति की सांस ली। भयजीत पर आरूढ़ हुआ, हमारे घोड़े फिर नगर की ओर दौड़ने लगे। उनके खुरों के नीचे धूल उड़ रही थी, परंतु हवा के कारण वह आसपास के पेड़ पौधों के पत्तों पर ही जम रही थी। मेरा मन शांत था, उसमें पराजय की ग्लानि नहीं थी, पलायन की पीड़ा नहीं थी, सफलतापूर्वक पीछे हटने का मिथ्या संतोष भी नहीं था। पिछली बार मृग्या से लौटते समय मैं जितना स्थिर चित्त था, उतना ही इस समय भी हो गया था, बल्कि घोष यात्रा का प्रसंग टल गया यह सोचकर एक विचित्र अकल्पनीय समाधान हो रहा था। नगर में जाने पर जीवा का संयम न रख सकने वाली कोई दासी कानाफूसी कर उठेगी। अंगराज कर्ण युद्ध से भाग खड़े हुए। अब मुझे उसकी चिंता नहीं थी। मेरा मन मुझसे कह रहा था कि परीक्षा की घड़ियों में से यह भी एक अविस्मरणीय घड़ी थी, अनपेक्षित रूप से घटित हो जाने वाली घटना थी।